السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بالهدى ودين الحق يرسله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله يا حبيب الله يا نور من نور الله صلى الله عليك وسلم. سیدی سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ جس کے سائے کے نیچے آپ بیٹھے ہیں یہ کیا ہے؟ درخت کہیے، جھاڑ کہیے، شجر کہیے، ہے نا؟ اس کی پتیاں ہری ہری اور تر و تازہ کیوں ہیں؟ میں سوال کرتا ہوں، جواب دو. بولیے. نہیں معلوم، نہیں معلوم تو مجھے بتانا پڑے گا. اس لیے کہ ایک زمین کے اندر، زمین کے ایک ٹکڑے کے اندر اس کی جڑیں इधर उधर फैली हुई और जमीन के अंदर जो पानी की तरी और नमी है वो जड़ें उसको चूसती और वो पानी नीचे से चढ़ता है ऊपर चलता है और एक एक पत्ती में वो पानी रस बनता है। आप एक पत्ती को तोड़ करके मस लें तो उसमें कड़वा रस निकलेगा कि नहीं। इसी तरह हर दरख्त को देखिए, अल्लाह की कुदरत देखिए। न यहाँ इलेक्ट्रिक पावर है, न मोटर पंप यहाँ सेट है कि पानी को खींच खींच करके इसकी जड़ों से इसकी नसों में लाए और नसों से लेकर उसकी टहनियों में पहुंचाए और टहनियों से पहुंचाकर उसकी पत्तियों में पहुंचाए और पत्तियों की सब नसों में वो पानी कैसे चलता है। कभी सोचा आखिर इसमें ये कमाल कि पानी जो जमीन के अंदर नमी है उस नमी को चूसता है। इतने आप जोरदार है लेकिन पानी का एक ढेला जिसमें घास के पौधे जमे हैं वो भी पानी पी करके हरे भरे होते हैं। उस जमीन के एक ढेले को कितना बड़ा भी पहलवान है उसको दबाए तो टमाटर की तरह रस नहीं निकलेगा, उसका हाथ दुख जाएगा, छिल जाएगा। पानी का एक कतरा क्या, एक कतरे का करोड़वां हिस्सा भी नहीं निकलेगा। ऐ परवरदिगार आलम, इसकी जड़ों को तूने इतनी ताकत दे दी है कि पहलवान जिस मिट्टी से पानी निकाल नहीं सकता, निचोड़ नहीं सकता, ये नन्ही नन्ही बारीक बारीक जड़ें उससे पानी निकालना। और सिर्फ पानी ही नहीं निकालती, पानी निकाल कर ऊपर सप्लाई करती है। पानी की ताकत है ऊपर से नीचे आए, लेकिन नीचे से ऊपर जाना पानी के बस की बात नहीं है। आखिर इस नीचे के पानी को ऊपर कौन पहुंचाता है? ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि उसने इस दरख्त की जड़ों को ऐसा पावर दे दिया है जो इलेक्ट्रिक पावर में पावर नहीं है कि बगैर मोटर के बगैर करंट के पानी खींचता है। तुम्हारा मोटर पंप 100 फीट के अंदर जब पाइप डालो तब पानी खींचता है, ये तो ऊपर ऊपर से पानी निकाल लेता है। जरा उसकी कुदरत तो देखो। अल्लाह इसलिए फरमाता है इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। बेशक अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। एक दरख्त के बारीक जड़ों में इतनी तवानाई कि कितने पत्ते उसने पैदा कर दिए। मिट्टी और पानी की यह करामत है। अगर इसकी जड़ जमीन से उखाड़ ली जाए और पानी इसे न मिले तो क्या यह हरा भरा रहे? ये पानी की करामत है। सुन्नी भी मानता है, सुन्नी भी मानता है और वहाबी भी मानता है, शिया भी मानता है, अर्थिंग वाला भी मानता है, एरियल वाला भी मानता है, वे टोपी वाला भी मानता है, पायजामा पहनने वाला भी मानता है, चड्डी और चड्डा पहनने वाला भी मानता, सब मानते हैं। इसको समझाने की तुम्हारा ना जरूरत नहीं कि इस दरख्त के अंदर कमाल है और ये कमाल रब ने अता फरमाया कि जहां एक पत्ती नहीं थी आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर इतना कनावर सायदार दरख्त हो गया। ये किसने ताकत दी है? इसमें न जबान है न जान है। जान तो हम मानते हैं, दुनिया समझती इसमें हमारे जैसी रूह नहीं है, लेकिन ये बढ़ रहा है, हिल रहा है, फल रहा है, फूल आ रहा है, शहद की मक्खी बैठती है, पेट भरकर शहद बनाती है, ये सारे काम एक दरख्त बेचारा चुपचाप कर रहा है। इसकी खामोशी को आप देखो, खामोश जरूर है लेकिन अल्लाह की कुदरत का मरकज बना हुआ है। बेजान है लेकिन मजहरे कुदरते इलाही है। और कितना फायदा दे रहा है, धूप आज बहुत तेज चल थी, आदमी अगर आते आते इसको यहाँ खड़ा होना पड़े तो बोलता नहीं, यहाँ नहीं खड़ा होगा, वहाँ खड़ा होगा। कहाँ पर? दरख्त के साये में इतनी नाम मिलता है। इस दरख्त को सायेदार मिट्टी ने बनाया है, इस दरख्त को सायेदार पानी ने बनाया है। थका मादा मुसाफिर बैठकर अपने पसीने पहुंचता है और सुकून महसूस करता है। ऐ लोगों, एक दरख्त के अंदर रब की ये कुदरत नजर आ रही है। समझे? अब मेरी दूसरी बात सुनो, ये दरख्त है और इंसान दरख्त नहीं है, अशरफुल मखलूकात है। दरख्त के अंदर रब की ये कुदरत है तो अल्लाह ताला इस इंसान को जब मुंतखब फरमाता है कि रब की कुदरतों को जाहिर करे तो उसे सादा आदमी मत देखना। हाफिज़े मिल्लत एक मामूली से इंसान नजर आते थे, थके हुए साफे को सर पर जैसे कम किए रहते थे, मलमल का नहीं गाढ़े का कुर्ता पहनते थे और एक लकड़ी लेकर चलते थे। अल्लाह अकबर, ऐसी सादगी की जिंदगी कि देखने वाला आम इंसान समझ लेता था। लेकिन तुम क्या समझते हो, इस दरख्त को अल्लाह ने साया अता करने की ताकत अता फरमाई, इस दरख्त के अंदर बैठ करके लोगों को सुकून अता फरमाया। जब इंसान अल्लाह की कुदरतों को हासिल करता है, कुरान और हदीस की जमीन से पानी चूसता, ये दरख्त मिट्टी से पानी चूसता है और उलमाए अहले सुन्नत हदीस और कुरान की जमीन से पानी निकालते हैं। तुम तो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हो, वो सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं पढ़ते, अलिफ का माना भी जानते हैं, लाम का माना भी जानते हैं, हे और नीम दाल का माना भी जानते हैं। अलिफ और लाम इस्तेगराक के लिए है, जिंस के लिए है, ये नौइयत पर दलालत करता है। अभी दरसगाह से मैं निकल कर आ रहा हूँ, आप घबराइएगा नहीं। ये अलिफ लाम कैसा है ये तुम नहीं जानते, वो जानते हैं जो रब की नाजिल की हुई कुरान की जमीन में अपनी रूह की जड़ों को पैवस्त कर चुका है और हदीस के पानी से तरोताजा हो गया है। उसकी जबान से जब निकलता है तो गुफ्त है वो गुफ्त है अल्लाह में अब्दुल्ला बोल के हाफिज़े मिल्लत हैं, लेकिन उनकी बोली हमारे तुम्हारे जैसे नहीं होती है। वो जब बोलते हैं तो कुरान की रोशनी में बोलते हैं, वो बोलते हैं तो हदीस मुस्तफा की तर्जमानी करते हुए बोलते हैं। अरे वो मसला बताते हैं तो इमाम अहमद रजा के फतावा रसमिया से बताते हैं। जब वो तुम्हारे सामने ईद और बकरीद के चांद के मसले बताते हैं तो बहार शरीयत की बहार दिखाते हैं। जब इंसान के हुस्न कफन का वो तुम्हें तरीका सिखाते हैं तो कानून शरीयत की रोशनी में बताते हैं, इसलिए कि उनकी जिंदगी खुद कानून शरीयत होती। वो हाफिज़े मिल्लत जिनकी आप यादगार मनाने के लिए आए, आप ही उसके हकदार नहीं हैं। सबसे ज्यादा हकदार तो मैं हूं। आप कहेंगे वो कैसे? मेरे दादा उस्ताद हैं, मेरी सनद हदीस में मुफ्ती शरीफुल हक साहब हैं और मुफ्ती शरीफुल हक साहब ने रिवायत की है हाफिज़े मिल्लत। मेरी सनद हदीस में मुफ्ती शरीफुल हक साहब हैं और उन्होंने रिवायत की है मुफ्ती आज़म से। मेरे सनद हदीस में मुफ्ती शरीफुल हक साहब हैं और उन्होंने रिवायत की है मुफ्ती आज़म से। میری سند حدیث میں مفتی شریف الحق صاحب ہیں, انہوں نے روایت کی ہے مولانا سردار احمد صاحب سے, ایک سند حدیث نہیں ہے, تحویل در تحویل, یہ شاخ در شاخ ہے, اور یہ سب کے سب آ کر روایت کرتے ہیں صدر شریعت, ادھر سے شاخ ادھر سے جڑ, سردار احمد صاحب حافظ ملت, یہ مولانا سردار احمد صاحب صدر الشریعہ کے شاگرد, حافظ ملت صدر الشریعہ کے شاگرد, اور خود مفتی شریف الحق صاحب بھی فتوے میں صدر الشریعہ کے شاگرد. اس طرح سے یہ ساری جڑیں جا کر کے ایک جگہ جمع ہوتی ہیں جس کا نام ہے صدر الشریعہ, اور صدر الشریعہ کا شجر علم اور نہر علم جب چلتی ہے تو اعلیٰ حضرت کے درجہ سے جا کر کے ملتی ہے, اور اعلیٰ حضرت کی نہر چلتی ہے تو سیدنا آلے رسول مارہ روی سے ملتی ہے, اور سیدنا آلے رسول مارہ روی کی جب نہر علم نہر چلتی ہے تو محدث عبد العزیز حضرت محدث دہلوی سے جا کر کے ملتی ہے, اور اس طرح سے ملتے ملتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جاتے ہیں. اس لیے ہم کو بھی حق ہے کہ اس نہر سے جو ہم کو قطرہ ملا ہے اس کو ہم پی پی کر اپنی پیاس بھی بجھائیں, اور تھوڑا بہت جو ہمارے پیالے میں ہے وہ آپ کو بھی ہے نا, پیو گے کہ پھینکو گے. آج تو پیروں کا جھوٹا ایسے پیار سے پیتے ہیں, کیوں پیتے ہو کہ یہ میرا پیر ہے میرا استاد ہے, ابا کا جھوٹا نہیں پیو گے لیکن پیر کا. کبھی ابا سے مانا کہ ابا ذرا تبرک دے دیجیے, بولو تم جانتے نہیں یہ جانتے ہیں کہ ابا آپ کی حیثیت کیا ہے, ابا کتنی نماز پڑھتے ہیں جانتے ہیں. تو بیٹا چونکہ اپنے گھر کا بھیدی ہوتا ہے اس لیے وہ زیادہ تبرک نہیں مانتا ہے, لیکن پیر سے وابستہ ہو گیا تو اس کی چھڑی چومے گا, اس کے برتن میں جس پلیٹ میں کھایا ہے ہنڈوں سے لے کر اسی برتن میں کھائے گا, اگر کچھ نہیں ملا تو دھو کر کے پی لے گا. آخر یہ کیوں محبت ہے, اس لیے اس جھاڑ کے نیچے کیوں کھڑے ہو, اس نے زمین میں گھر کے پانی چوسا ہرا بھرا ہوا تو سب اس کے سائے سے پیار کرتے ہیں. اے لوگو اگر یہ ببول کا سوکھا جھاڑ جس میں کانٹے ہوں کیا آپ جا کے اسے اپنے بدن کو لگائیں گے؟ اگر لگائیں گے تو دن بھر کھجلی ہوتی چلی جائے گی. ارے اس سائے دار درخت میں جاتے ہیں جس نے مشقتیں اٹھائی ہیں, دھوپ میں جلا ہے, پانی کھینچا ہے, ہم حافظ ملت کے علم کے سائے میں کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ نے بھوکے پیاسے رہ کر صدر الشریعہ سے علم حاصل کیا. اٹھا کر کے دیکھو حضرت سید مولانا غلام جیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی, اس کا مقدمہ اٹھا کر دیکھو, فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جس میں حافظ ملت سید غلام جیلانی صاحب اور میرے چھوٹے سگے ماموں اور سسر خسر حضرت رئیس الاسکیہ مولانا غلام یزدانی صاحب, مفتی رفاقت حسین صاحب اور قاضی جونپور مولانا شمس العلماء شمس الدین صاحب, اور بہت سے نام اس میں لکھے ہیں, سب کی فہرست انہوں نے دی ہے کہ ہم لوگ صدر الشریعہ کی خدمت میں جب اجمیر شریف پہنچے تو راستے میں ہمارے لیے جیب میں کچھ پیسہ نہیں تھا, بغیر پیسے کے صرف ٹکٹ کا پیسہ تھا, ہم لوگ اجمیر پہنچے. لکھتے ہیں کہ جب ہم اجمیر شریف پہنچے علم حاصل کرنے کے لیے تو اتنی بھوک لگی تھی, آج تو گھٹا گھٹ چائے پیتے ہوئے. فرماتے ہیں کسی ساتھی کے پاس ایک آنا دو آنا بھی نہیں تھا, سخت ہم لوگ بھوکے تھے. جب مدرسے میں گئے تو ہم نے دیکھا کہ مدرسے کے تاپ میں سوکھی ہوئی روٹی کے ٹکڑے رکھے. بہت سے سننا علم کیسے حاصل ہوتا, जिन बच्चों ने मतबख से खाना लाए और लाकर जो बच गई रोटी वो ताक में रखी हुई थी, फरमाते हैं हम उन रोटियों को मन्नो सलवा समझ रहे थे। भूख की आलम था, सूखी सूखी कई दिन की रोटी ताक से निकाला, पानी में भिगोया और मतबख से इजाजत लेकर नमक लाए और हरी मिर्च लाए और फिर उसको एक पत्थर पर पीसा। फरमाते हम सब साथी हल्का बना करके बैठ गए, जैसे कि किसी शाही तस्कर खान पर बैठे हैं। सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई कि खाने को मिल गया है। उस सूखी रोटी को हरी मिर्ची और नमक की चटनी के साथ खा करके हजरत फरमाते हैं हम लोग बहुत खुश हुए कि अल्लाह का शुक्र अदा किया कि मौला तूने मन्नो सलवा
खिला।
पढ़ने वालों, इल्म हासिल करने वालों सुनो, क्या कभी तुमने सूखी रोटी तो दरकिनार, अगर मतबख से बासी भात मिल जाए तो उठाकर प्लेट फेंक दोगे? इल्म हासिल करना है तो हाफिज़े मिल्लत के नक्शे कदम पर चढ़ो। इल्म हासिल करना है तो शारहे बुखारी सज्जन गुलाम जिलानी साहब के लिखी हुई तारीख को देखो। खुदा की कसम इन लोगों ने इल्म हासिल करके सबकी प्यास बुझाई और ऐसे तनावर दरख्त बने हैं कि आज सारी थकी मादी दुनिया और सुन्नियत उनके साय में बैठने के लिए बेचैन। हाफिज़े मिल्लत को हमने क्यों याद किया है? इसलिए याद किया है कि उन्होंने रसूल अकरम की हदीस याद की थी, उन्होंने आयत करीमा का हिफ्ज किया था। अल्लाहु अकबर, चलते थे तो कुरान पढ़ते थे, उस बुढ़ापे में कभी दौड़ नहीं करते थे। अरे हर दौरा उनके लिए कुरान का दौर था। ऐसे हाफिज थे वो कि बगैर दौड़ किए हुए मेहराब सुनाते थे, तरावी सुनाते थे। अल्लाहु अकबर, ऐसे पाकबाज लोग। और इंकिसारी का आलम ये है, एक मर्तबा मैं घोसी पहुंचा और हजरत से मुलाकात के लिए मुबारकपुर पहुंचा। मेरे संगी और हम जुल्फ मौलाना डॉक्टर शकील अहमद साहब, अच्छे आलिम शायर लक्कार और बड़े निफासत पसंद हैं, वो भी मेरे हमराह थे, वो भी हाफिज़े मिल्लत के शागिर्द में। हम लोग पहुंचे, सुबह का वक्त था और पुराना मदरसा जो कबेलू से बना हुआ एक मामूली सा घर था, उसी में हाफिज़े मिल्लत ने पूरी जिंदगी गुजारी। जब हम लोग पहुंचे तो बैठे हुए कुछ वजीफा फरमा रहे थे, इजाजत लेके अंदर दाखिल हुए, खड़े हो गए, माशाअल्लाह ऐसे बोलते, माशाअल्लाह मेहमान आ गए, अल्लाह की रहमत आ गई, माशाअल्लाह मेहमान आ गए, अल्लाह की रहमत आ गई। चटाई लाकर अपने हाथ से बिछाई और फरमाया तशरीफ रखी, हमारी आंखों में आंसू आ गया। उस जमाने में अरेठा होता था, अरेठा कहते हैं किसको मालूम है? तुअर की जो दरख्त होता है, तुअर अरहर का जो दरख्त होता है उसकी फल्ली निकाल ली जाती है और उसके दरख्त को धूपी में सुखा करके सुबह चाय उस पर बनाते हैं। लकड़ी नहीं रहती है, वो जल्दी से जलता है, उसी को तोड़कर चूल्हे में डाल देती है माँ बहनें और आराम आराम से चाय बन जाती है। अब तो हर घर में गैस है, पहले पेट में गैस होती थी, अब चूल्हे में गैस है। अब बोलो वो कैसा खाना बना, उसमें भी बदबू होती है, तो सब अब गैस वाला खाना खाते थे और पहले पेस्ट वाला खाना खाया करते थे। हाफिज़े मिल्लत थे और अरेठे की दो लकड़ियां लेकर आए जिसमें पतली पतली शाखें होती थी, मैं उठ करके हजरत के हाथ से उठा लिया। हजरत लाइए हम इसको तोड़ते हैं। नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, ये जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मैंने तो जरा जोर से खींची
ये नहीं देखा कि हजरत के हाथ में कुछ चुभेगा, ये किया हजरत ने छोड़ दिया, मैंने उसको तोड़ा। फिर हजरत माचिस लाए, मिट्टी का तेल लाए, उसमें थोड़ा सा तेल डाला और फिर माचिस जला दी, मैंने अरेठे की लकड़ी डाल दी। हजरत गंज लेके आए और पानी अंदर था, पानी लेकर आए और खुद अपने हाथ से चाय बनाकर हम लोगों को इतना जलीलुल कद्र आलिम, जिसको सारे उलमा जलालतुल इल्म कहा करते थे, इल्म का जलाल था हाफिज मिल्लत के अंदर, लेकिन छोटों को नवाजते कैसे थे। आज अल्लाह अकबर, थोड़ा सा उलमा माफ करेंगे, हम कैसे मगरूर बन गए हैं। पगड़ी हमने बांध ली, थोड़ा सा इल्म आ गया तो हमारे सामने कोई कुछ नहीं है। दोस्तों, इनके सारी ये इज्जत और आबरू है और गुरूर और निखवत, ये सबसे बड़ी शैतानत है। याद रखना, जिस फल में ज्यादा फल होता, जिस दरख्त में ज्यादा फल होता है उसकी शाखें झुकती हैं कि खड़ी होती है, और जिसमें फल नहीं है वो तो खड़ी रहती है। फल वाली शाख झुकती है, बेफल वाली शाख उठती है। मेरे दोस्त, इसी तरह सूफियाए किराम ने मिसाल दी है, जिसमें रूहानियत का, इल्म का, तकवा का फल होता है वो मगरूर बनकर खड़ा नहीं रहता है। उसकी शान ये है कि वो हर आदमी के सामने झुका हुआ नजर आता है, और जो झुका हुआ इस जमाने में है लोग उसी को ज्यादा पत्थर मारते हैं। किसको पत्थर मारते हैं, किस दरख्त को? फल लगा लगाया डंडा, एक डंडा मारा। डंडा मारते हो तो चिल्लाता नहीं है वो, तुम्हारे दामन में एक आम डाल देता है, बेर के फल डाल देता है, जो उसमें लगा है तुम्हारे रुमाल में भर देता है। मारने वाले मार, लेकिन हम तुमसे बदला नहीं लेंगे, इस मार पर तुम्हें हम इनाम अता फरमाते हैं। ये पहले इल्म का शऊर होता है। इन्हें गालियां दोगे वो तुम्हें मसले सिखाएंगे, उनके इज्जत नहीं करोगे, कसम खुदा की वो हर सुन्नी की इज्जत करता है। ये है उलमा की शान, और ये होता है इसका नतीजा और रिजल्ट ये है कि उनके दिल में अल्लाह की खशियत है, और जिसके दिल में अल्लाह का खौफ और खशियत है वो हर इंसान की इज्जत करेगा। इंसान से बुरा है सुन्नी, और अगर कोई दुश्मनाने दीन और इस्लाम आए तो उसके लिए रब फरमाता है, या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वग़लुब अलैहिम। ऐ नबी, अल्लाह का मुनकिर काफिर और नबी का गुस्ताख मुनाफिक, जब ये तुम्हारे सामने आए और शरारत करें, लंगड़ी टांग उठाएं, तो ऐ हबीब, आपकी रहमत का तकाजा है सब पर, लेकिन ऐसे गुस्ताखों के लिए या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन, ऐसे काफिरों के साथ जिहाद कीजिए, ऐसे मुनाफिकों से जिहाद कीजिए। अगर जिहाद से भी नहीं मानते हैं, कुछ नरमी महसूस होती है, तो वग़लुब अलैहिम, और उन पर कर्रे बन जाएंगे। ये अखलाक दो किस्म का होता है, ये दोनों उलमा का अखलाक है। जो नबी का अखलाक है, अल्लाह ताला फरमाता इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ हबीब, हमने आपको अखलाक के, कैरेक्टर के सबसे बुलंद मकाम पर फाइज किया है। क्या है भाई, आ गया क्या वहां पर कोई 24 नंबर? अभी उसी की बात हो रही है। अगर 24 नंबर आए छोड़ना मत, 24 नंबर समझे इसको कहते? अरे बिल्ली नहीं भाई, चूहा। अब जब के कायदे से चूहे, चूहा नहीं, चूहे का अदब निकालोगे तो ठीक 24 होगा। इसीलिए हमारे सुन्नी ऐसे बदमजहबों को चूहा कहते हैं कि चूहे की आदत ये है कि बगैर किसी मकसद और मतलब के आपको नुकसान पहुंचाता है। किताब रखी है आगे काट काट के चला जाता है। अब एक किताब के लिए उसका पेट कैसे भरा, खाता नहीं, खाली कुतर कुतर के कुतर कुतर करके भर जाता है। आपका कपड़ा रखा हुआ है, कपड़ा काट देता है। तानी रखी है, तानी काट के भाग जाता है। पावर लूम की भीड़ काट के भाग जाता है। अबे तेरा पेट इससे भरता है? नहीं भरता नहीं, सब वही काट काट के गिराते जाता है। इसीलिए हुजूर ने चूहे को खबीस कहा, चूहे को हुजूर ने खुबसा में शामिल फरमाया है। इनका फायदा पेट भरने का नहीं है, सिर्फ तुमको नुकसान पहुंचाने का है। इसी तरह से ये हम खाम स्टार्ट करते हैं, उलझाते रहते हैं, तो वहां भागेगा, वो भागेगा तो कहीं एयर कंडीशन में जाएगा, नाली में जाएगा, उसका मरकर वही। तो घबराओ मत, आए ना तो कुचल दिया करो, आकर तो प्रैक्टिस कर लिया करो। तो मैं क्या कह रहा था, हाँ कुफार पर सब उसी वक्त आया था। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ऐ हबीब, आपको कैरत करके हाई से हाईएस्ट इस स्टेज पर हमने आपको फारिश किया है। आपका इस स्टेटस हाईएस्ट है, इससे ऊंचा किसी का अखलाक नहीं है। अब अखलाक के दो रुख हैं, एक अखलाक है आपस का, रुहमा बैनहुम, जब आपस में रहो तो ऐसे शीरो शकर बनकर रहो कि एक दूसरे की गलती हो तो आंख फेर लो, माफ कर दो। ये सुन्नी तुम्हारे मुआशरे की मजबूती है और हाफिज़े ज़िल्लत का यही पैगाम। वो फरमाते थे इत्तेहाद में जिंदगी है। ये इत्तेहाद किससे, तुम कटों से नहीं, ये इत्तेहाद सुन्नियों से है। आज सुन्नी बेदम क्यों हो रहा है, हाफिज़े ज़िल्लत के इस इरशाद से उसने चश्मपोशी कर ली है। इत्तेहाद अखलाक का बेहतरीन मीनारा है। आप फरमाते हैं इत्तेहाद में जिंदगी है और इख्तिलाफ में मौत है। तो अब मरना चाहते हो कि जिंदा रहना चाहते हो? शायद मरना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो, जिंदा रहना चाहते हो। आपको जब यकीन है कि मैं खाऊंगा पीऊंगा तो जिंदा रहूंगा, तो आप दो महीने तक खाना पीना छोड़ देंगे? हैं? आपको यकीन हो जाएगा मर जाऊंगा, इसलिए आप खाने पीने का रोज ख्याल रखते हैं, ध्यान से खाते पीते हैं। जब आपको मालूम है इत्तेहाद हमारी सुन्नियत की जिंदगी है, इत्तेहाद हमारी कौम की जिंदगी है, इत्तेहाद हमारे रूहानियत की जिंदगी है, जब आपको यकीन है तो इत्तेहाद को अपनाते क्यों नहीं? अगर इत्तेहाद को अपना लोगे तो तुम्हें हर सुन्नी में प्यार हो जाएगा। ये मत देखो ये कादरी है, ये नक्शबंदी है, ये सुहरवर्दी है और ये चिश्ती है। अरे सुन्नी है कि नहीं ये देखो। अगर नक्शबंदी सुन्नी है, हमारे सीने से लगा हुआ है। सुहरवर्दी सुन्नी है, हम उसकी ड्यूटी और चप्पल सर पर रखने के लिए तैयार हैं। ये नक्शबंदी सुन्नी है, हमारी आंखों की ठंडक है। ये सुहरवर्दी सुन्नी है, खुदा की कसम हमारे दिलों की धड़कन है। ऐ सुन्नियों, ये खानकाहों का इख्तिलाफ, یہ اختلاف نہیں ہے، عقیدے کا اختلاف اختلاف ہے. اختلاف تمہیں بتاتا ہے کہ اے لوگوں، روٹی سے بھی زندگی ہے، چاول سے بھی زندگی ہے، مٹن سے بھی زندگی ہے، چکن ٹکا سے بھی زندگی ہے، گلاب جامن سے بھی زندگی ہے. یہ سب کھانے کی چیز ہے نا، کھاتے ہو لیکن اس کا نام گلاب جامن، بولے گلاب جامن نہیں ہے، یہ بریانی ہے، نہیں کھاؤں گا میں بریانی، نہیں کھاتا. میری اما نے شروع سے مجھے چار بھات اور روٹی کھلایا، وہی کھاؤں گا. ایسا نہیں ہے، ہر کھانے کی جائز چیز تمہاری زندگی کی ضمانت ہے. اسی طرح ہر کام کا تمہارے اتحاد کی ضمانت ہے. تمہیں نقشبندی دیکھ کر نفرت نہیں کرنا چاہیے، قادری دیکھ کر الگ نہیں ہونا چاہیے، شہروردی دیکھ کر الگ ہونا نہیں چاہیے. یہ کھانے کی سب چیز ہے، نام الگ الگ ہے، گلاب جامن ہے، رس گلا ہے، امرتی ہے، کاجو کتلی ہے تو سب مٹھائی. کاجو کتلی کو، کاجو کتلی کو نالی میں ڈالو اور گلاب جامن کو بھکا بھک کھاؤ، یہ زندگی نہیں ہے. یہ سب سے بڑا مورکھپن ہے. صرف یہ دیکھو کہ مٹھائی ہے کہ نہیں. اور مٹھائی میں کیا ہوتا ہے؟ میٹھا ہوتا ہے، شکر ہوتی ہے، اور کسی میں میدا ہو جاتا ہے، کسی میں وہ ماوا ہوتا ہے، کسی میں سوجی ڈالتی ہے، کسی میں کچھ الگ الگ مٹیریل ہوں گے، لیکن سب کا مین پوائنٹ مٹھائی. شکر اب صحیح بول رہے، بچہ جی بول رہا ہے شکر. یہ شکر جو ہے یہی اصل ہے، اور اس اصل کو اگر آپ دیکھیں گے تو یہ اصل کاجو کتلی میں بھی ہے، گلاب جامن میں بھی ہے، لڈو میں بھی ہے، اور برفی میں بھی ہے، کلاکند میں بھی ہے. ایک ایسی چیز جسے شکر کہتے ہیں، اور اسی کی وجہ سے یہ سب مٹھائی کے بندھن میں بندھے ہوئے ہیں. اسی طرح عقیدہ شکر کی طرح ہے، عقیدہ شکر کی طرح ہے. اگر عقیدہ سنیت کا سہروردی میں ہے، اس کاجو کتلی کو بھی ہم خریدیں گے. اگر سہروردی میں ہے، اس رس گلے کو بھی ہم خریدیں گے. اور شکر اس میں ہے، اس سہروردی، اس قادری کو بھی ہم اپنے روح کی غذا بنائیں گے. اے لوگوں، اصل چیز پر نگاہ رکھو، اور الگ الگ ذکر اسکار کا اختلاف ایسے ہی ہے جیسے جیسن ہے، روا ہے. یہ اختلاف نہیں ہے، یہ اپنے طریقوں کے الگ الگ اصول ہیں، لیکن سب میں شکر. اور اگر کوئی حلوا جی شکر کے بجائے ایک کلو کاجو کتلی اور کلاکند میں شکر جیسی ایک چیز ڈال دے، جو شکر سے بھی وائٹ نظر آتا، دل سے رکھا ہے اگر، تو آپ دیکھو گے تو وائٹ یس ہوگا، اور شکر تھوڑی سی مٹیلی ہوگی، لگے گا کہ یہی اچھا ہے. اگر حلوائی نے ایک کلو شکر کے بجائے کاجو کتلی میں ایک کلو نمک ڈال دیا، تو آپ کو خرید تو لیں گے، کیونکہ جو اندر ہے وہ نظر نہیں آتا، نہ شکر نظر آتی ہے نہ نمک نظر آتا ہے. یہ تو کھانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ اس پار والا ہے کہ اس پار والا ہے. سمجھ گئے؟ جو اندر ہے وہ پہلے نظر نہیں آتا، عقیدہ پہلے نظر نہیں آتا، وہ تو شکر ہے، گھل مل گیا ہے، بس عقیدگی نظر نہیں آتا. جب قریب آ جاتا ہے رسول کا سلام مت کرنا، سمجھ جاؤ نمک مل جاتا ہے. اب ٹیسٹ ہو گیا، اور جب نمک والی کاجو کتلی کھاؤ گے تو کیا کرتے ہو؟ واہ واہ کیا شاندار کاجو کتلی ہے. ارے ہر سمجھدار آدمی ایسی کاجو کتلی جس میں کلو بھر نمک ڈالا گیا ہے، اور کوئی مورک اس میں تھوڑی مرچی کا پاؤڈر بھی ڈال دے، اور کریلے کا تھوڑا رس بھی ڈال دے، اب ایسی کاجو کتلی منہ میں ڈالو، ارے مردے کو بھی ڈالو گے تو بھاگ جائے گا. دیکھ देखने में वैसे ही है, चांदी का वरक लगा है, माशाअल्लाह जो त्रिकोण उसमें उसकी काशें काटी गई है, पेश करने के बाद थोड़े फूंक देना यही इंसानियत है।
पेश करने के बाद भी बोले और खाना बोले पागल हो गया,
वो अकल समझदार आदमी नहीं है। इसी तरह ऐ लोगों, बदअकीदगी जब टेस्ट हो जाती है और अगर तुमने टेस्ट नहीं किया है, किसी ने टेस्ट करके बता दिया खाना मत,
अब फिर भी तुम बोले खाऊंगा या मत,
तुम्हारी गर्दन खुद पकड़ के खींचेगा। अरे दोस्तों, लिबार्टी में हर चीज टेस्ट हो जाती है, कि जहर है कि नमक है कि शक्कर है। हमारे यहाँ भी एक लिबार्टी है जिसका नाम बरेली शरीफ है, सबको टेस्ट कर करके रख दिया, हर काजू कतली ने को बच्चे को ये कतली कतल कर देगा। इसलिए दूर न हो, आओ आपके मिल्लत की सादगी देखो, उसमें ईमान की शक्कर मौजूद है। मुफ्ती आजम का किरदार देखो, उसमें मुफ्ती आजम के किरदार में ईमान की चमक दमक है। ये हमारे असाती ने मिल्लत है जिन्होंने टेस्ट करके तुम्हें बता दिया। देखो होशियार रहो, शक्त दिखाए, जहर पिलाए, आतिम दान सौहर को, इस मुर्दार को क्या लचाए, दुनिया देखी खाली है। सुनियो, हम खूने जिगर पिला रहे हैं, हमको सदरुशरिया के जरिए हाथ दे जिल्लत, हाथ दे जिल्लत के जरिए मुफ्ती शरीफुल हक साहब से यही सबक मिला है कि असिद दावल के पास जिन पर काफिरों पर शक्ति करो, रहमा हो भाई मैं। नबी के दो किरदार हैं और ये हमारे उलमा में ये दोनों किरदार अपने अपने मौके पर नजर आ रहे हैं, और जिसमें ये दो किरदार होंगे वही अल्लाह से डरने वाला होगा, और उसी डरने वाले के लिए अल्लाह ताला ने अपनी रजा का ऐलान फरमाया है। कुरान फरमाता है ज़ालिक रब्बी अल्लाहु अनहुम व रब्बुहु अन ज़ालिक लिमन खशिया रब्बा, वो लोग अल्लाह से राजी और अल्लाह उनसे राजी। ये कौन वो लोग हैं जिनके दिल में अल्लाह की खशियत और खौफ मौजूद है। उसी को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, मेरे बंदों में सबसे ज्यादा जो अल्लाह की खशियत और अल्लाह के खौफ के अमीन है वो उलमा की जमात है। आप उलमा की इज्जत करो ना करो, लेकिन दुनिया वाले तो करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं। आलिम छोटा हो या चाहे बड़ा हो, उसकी इज्जत करो। मैं कसम खा के कहता हूँ, जिस दिन हमारी कौम इन उलमा की इज्जत करना सीख जाएगी, तुम्हारी इज्जत फरिश्ते करेंगे। मैं कसम खा के कहता हूँ कुरान और हदीस की रोशनी में, जिस दिन उलमा की इज्जत करना हमारी कौम का छोटा बड़ा सीख जाएगा, उस दिन फरिश्ते इज्जत करेंगे, और जिस दिन फरिश्ते इज्जत करेंगे नोट बंद करने वाला भी इज्जत करेगा। समझ गए ना? और वो खसखसी दाढ़ी की मजा लंबी दाढ़ी रख लेगा इंशाअल्लाह। ये हाल है, डरो, ऐसे डरोगे, पहले डरने वालों की इज्जत करो। जब इनकी इज्जत करोगे फरिश्ते तुम्हारी इज्जत करेंगे, और जब फरिश्ते इज्जत करने लगेंगे अरे तो सांप बिच्छू भी तुम्हारी इज्जत करेंगे। करते तो देखो, उलमा की कभी मत उछालो, आपस में इख्तिलाफ मत पैदा करो। यही हाफिज़े मिल्लत का दर्स है, पूरी जिंदगी हाफिज़े मिल्लत को हमने यही पढ़ाते और पढ़ते सुना है। करामत सुनने के लिए आ जाना कभी, करामत नहीं, सबसे बड़ी अजीमत यह है कि हम अल्लाह वालों के नक्शे कदम को अपनाएं। आला हजरत ने इसी तरह इशारा किया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराख है। बोलो, आपस में मिलजुल के रहोगे और पगड़ियां उछालना छोड़ दोगे, सुन्नियों को अपना भाई समझोगे, بد مذہبوں کو اپنا کٹر دشمن سمجھو گے, نماز پڑھو گے, نیک چلنی اختیار کرو گے. میں اپنے بوڑھے بزرگوں سے, شاید میری عمر کا کوئی بھی نہیں ہوگا, ہے کوئی 82 سال کا, آپ بتائے 82 سال والا کوئی نہیں ہے نا. الحمدللہ سب سے بزرگ نہیں ہوگی, عمر میں زیادہ ہے. کون ہے چلو ہے, وہ میرا دوست ہے. ایک میرا دوست تو ملا جس نے ہاتھ اٹھا کر میرا ساتھ دیا, باقی سب چپ چاپ. اس بوڑھے کی نصیحت کو یاد رکھو گے تو دنیا کا سب درد و غبار بھول جائے گا, دلوں میں جو غبار ہے وہ سب دھل جائے گا. مل جل کر کے رہو, آج وقت کا تقاضا ہے, آج وقت تمہیں آواز دے رہا ہے. اور ان طلبہ کی, ان علماء کی عزت کرو, تمہاری عزت بڑھتی چلی جائے. میں نے کل کی تقریر میں کہا تھا کہ مبارک پور کا بنکر طبقہ انہیں کی آبادی ہے پورے مبارک پور میں. نام بھی کتنا اچھا, پہلے ہی سے آدھا مبارک نہیں ہے, پورا مبارک ہے. اور ایسی مبارک درسگاہ اللہ نے وہی قائم کروا. میں کہتا ہوں کہ حضرت حافظ ملت نے ایسی دلوں میں جوت لگائی علماء اور طلباء کی عزت کی کہ مدرسہ اتنا مالدار نہ تھا کہ طلباء کو کھانا کھلا, اور تعلیم اتنی اچھی تھی کہ پورے ہندوستان سے طلباء آتے. حافظ ملت نے لوگوں کو جمع کیا, طلباء بہت ہیں, ہم ان کو کھانا نہیں کھلا سکتے. اے مبارک پور کے لوگوں, ایک ایک طالب علم کو اپنے گھر کھلاؤ. دیکھتے ہی دیکھتے 300 طلبا کو اس طرح والوں نے اپنے گھر میں کھلانے کا وعدہ. حافظ ملت کی ایک آواز پر لوگوں کے دلوں پر وہ اثر ہوا, دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. غریب غریب لوگ کھڑے ہو گئے, حافظ جی, حافظ جی کہتے وہاں کے بولنا بھی بیچاروں کو نہیں آتا. حافظ جی ایک بچوا کے موقع دے دے, حافظ جی دو لڑکیوں کے موقع دے دے. یہ بولی تھی, بولنے کا بھی اردو ڈھنگ نہیں تھا وہ زمانہ تھا خدا کی قسم, لیکن حافظ ملت کو انہوں نے سر کا تاج بنا دیا تھا. حافظ ملت کی آواز کو دل کی دھڑکن بنا لی تھی. 300 طلبا دیہات کے مختلف گھروں میں جھوپڑ پٹیوں میں لوگ کھلاتے تھے, اور چند سال نہیں گزرے کہ جھوپڑ پٹی اپنی بلڈنگوں میں رہنے لگا. مہمان رسول کو کھلانے سے کم نہیں ہوا. آج مبارک پور کا گھر ہر مالدار ہے, ایئر کنڈیشنوں میں رہتا ہے, اعلیٰ تعلیم ان کے بچے حاصل کرتے ہیں, بڑے بڑے علماء وہاں پر ہیں. ان بچوں کی, علماء کی قدر کرنے کا رب نے یہ سلا دیا کہ پورا مبارک پور خوشحال. آج وہاں کے سب لوگ کہتے ہیں یہ اشرفیہ کی برکت ہے, طلباء کی برکت ہے, علماء کی برکت ہے کہ آج ہمارے گھروں میں رحمت ہے. ارے رزق کی پریشانی نہیں ہوگی. دیکھو حافظ ملت چندے کے لیے نکلو, تو اس زمانے میں طریقہ یہ تھا کہ گیس بتی ہاتھ میں رہتی اور 4-5 آدمیوں کی, نعت پڑھنے والوں کی پارٹی ہوتی ہے. حافظ ملت ساتھ میں عشاء کی نماز پڑھ کر دے, لوگ ایسے جیسے کہ فقیر صدا لگاتا ہے دروازے پر آ کر, کچھ اشعار پڑھتا ہے. یہی حالت تھی حافظ ملت ساتھ میں, اور پڑھنے والے گیس کی बत्ती लेकर किसी के दरवाजे पर खड़े हो जाते थे, उसमें एक शेर मुझे याद रह गया है। वो शेर ये है, हम अपने मदरसे को रश्क लैला करके छोड़ेंगे, हम अपने मदरसे को रश्क लैला करके छोड़ेंगे, तुम्हें हम कैस के मानिंद शैदा करके छोड़ेंगे। ये शेर था जो दिलों में उमंग पैदा कर दे, जब मिल करके सब पढ़ते थे कि तुम्हें हम अपने मदरसे को रश्क लैला, लैला पर मजनू आशिक था कि उसके लिए अपनी उंगलियां बदन के गोश्त के टुकड़े काट काट करके भेजवा दिया करता था। तो शायर ने कहा था कि ऐ मुबारकपुर वालों, हम अपने मदरसे को रश्क लैला, लैला से अच्छा बनाकर छोड़ेंगे, हम अपने मदरसे को रश्क लैला करके छोड़ेंगे और तुम्हें हम कैस के मानिंद शैदा करके छोड़ेंगे, और तुम मजनू की तरह मुबारकपुर की लैला पर आशिक होकर के तुम्हें हम छोड़ेंगे। तो वाकई सब आज भी दीवाने हैं, आज भी दीवाने। इस तरह से हर हर घर, अमीर हो गरीब हो, इस दरवाजे में चले उस दरवाजे पर लोग पैसे लेकर खड़े रहते थे, हाथ से मिल्लत आएंगे उनके हाथ में हम पांच रुपया चंदा उस जमाने में बहुत बड़ा होता। 60 साल पहले की बात कर, वहां एक आना, दो आना, चार आना चंदा होता था। हाथ से मिल्लत चंदा करते हुए गली से गुजरे, एक भीख मांगने वाली बुढ़िया का घर था, उस घर के ऊपर लोग खड़े नहीं हुए, दूसरे दरवाजे पर खड़े थे। तो अंदर से रोती हुई निकली, हाफी जी मकान गुनाह करें, मोरे दुरिया पर मारे खड़े भय। हाफी जी मिलने चौंक पड़े, कहा माँ हम इसलिए नहीं कि तू तो खुद ही मांगती है। कहा नहीं, मोरे पास कुछ हो मगी हूँ। क्या है? एक मुर्गी का अंडा लाई, उसने मुर्गी पाल रखी थी, एक मुर्गी मैं दवा हूँ, एक मुर्गी का अंडा लाई और लाकर हाफिजे मिल्लत के हाथ में दी। जब चंदा खत्म हो गया तो हाफिजे मिल्लत ने सारे लोगों को रोक लिया और कहा, ये अंडा बड़ी मोहब्बत से आया है, इसकी कीमत कौन देगा? तो किसी ने कहा 4 आना। एक अंडा उस जमाने में 4 आने का, 4 आने का 2 शेर तो कितने का था गोश्त। किसी ने कहा 4 आने का, किसी ने कहा 1 रुपये का। अब बोली बढ़ती गई उस एक अंडे की, उस जमाने में 70 रुपये का वो अंडा मौलाना देता। अंडा देने वाले की जरा मोहब्बत देखो और लेने वाले के हाथ की बरकत तो देखो, इससे और बड़ी करामतें क्या हो सकती हैं। अब 70 रुपये उस जमाने के, मैं कहता हूँ इस जमाने में कम से कम वो 80 लाख रुपया हो जाए। अगर कीमत लगाई जाए तो एक अंडा इतना कीमती बिका, अल्लाह अकबर, आप क्या समझते हैं? आप ये मिल्लत की कुर्बानियाँ, ये है उनकी करामत, जो बोलते लोग आपकी बोली पर कुर्बान होने के लिए तैयार। आज मुबारकपुर की पूरी दुनिया में शोहरत है। ऐ दुनिया के लोगों, उठो, उलमा की इज्जत करो, आप इसे मिल्लत के नक्शे कदम पर चलो, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। वो क्या बहक सके जो ये सुना लेके चले। जहाँ मदरसा है, तालिब इल्मों को अपने घर ला करके, लेकिन तालिब इल्मों को भी मैं नसीहत करता हूँ कि आकर के किसी घर में साक्षात मत करना, घर में मत करना, ये सबसे बड़ी परेशानी है। शेर साहब का खाने आया तो फिर यू बैठ गए, उसका तुझे कहाँ गए तो बोले सर वहां पे आए, झूठ बोल के लम दम दम। तालबे इल्म नहीं, अपने को तालबे इल्म समझे कि मैं चलता हूँ तो फरिश्ते मेरे कदम के नीचे पर बिछाते, میں چلتا ہوں تو میرے سر پر فرشتوں کے نورانی پر ہوتے ہیں. علماء بھی اپنی حیثیت کو سمجھیں اور آپ ان کی عزت کرو. خدا کی قسم تمہیں علم کی روشنی ملے گی, اس کی برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے. انما یخش اللہ من عباده العلماء, علماء ہی رہے ہیں جو اللہ کی خشیت کے امانت دار ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو سنی بنا کر رکھے. مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے دنیا میں اتنا بڑا بڑا مجمع, ادھر مجمع ادھر مجمع, ماشاء اللہ سب کو دیکھے ہی میں نے, پیچھے بھی ہے آگے بھی ہے دائیں ہیں بائیں ہیں, لیفٹ ہینڈ بھی ہے رائٹ ہینڈ بھی ہے, ہمارے سینے کے سامنے بھی ہے. ارے ہر طرف ایسا لگتا ہے کہ امام محمد رضا کی بیٹالین لڑکی ہے. ایسے ہی جوش ہونا چاہیے, اور صرف جلسے میں جوش نہیں, نماز پڑھو. اللہ کا جب بلاوا آئے حی علی السلام مسجدوں میں دیکھو کتنی برکت ہوتی تھی, کتنی برکت. مجھے آسانی ہو جائے گی, روزی کا تعبیر لکھنا بند ہو جائے گا جس میں تم نماز پڑھنے لگے. پڑھو گے نماز پڑھو گے. ابھی تو ماشاء اللہ دنیا میں بہت سے نوجوان داڑھی رکھ رہے ہیں, بند نماز ہیں. اللہ تعالیٰ بوڑھوں کو بھی توفیق عطا فرمائے. یہ بوڑھے جو ہیں روزانہ آم کی گٹھلی جیسے چھلا. ارے بوڑھے ہو گئے, کون سی تم کو لڑکی تلاش کرنا ہے؟ ارے بوڑھو داڑھی تو رکھو. نوجوان جب کتنی داڑھی رکھتے رہتے, اور کوئی 80 سال کا میری عمر کا ہوگا, بہت سے ایسے ہوں گے آج تک باقی کریں گے, نہ میں آنکھ نہ پیٹ میں دانت, آم کی گٹھلی جیسے فکر فکر کر کے. کب تک یہ رہے گا؟ اللہ کے حبیب کو منہ دکھانا ہے, جاؤ قبر میں تو نبی کی صورت, نبی کی داڑھی کی زینت بنا کر کے اپنی صورت کو سنوار کر کے جاؤ. نوجوانوں اگر یہ بڈھے دادا تمہارے داڑھی نہیں رکھتے, تم داڑھی رکھ کے ان کے سامنے کھڑے ہو. اور آج بوڑھیاں ایسی ہیں, میں کیا بتاؤں کس کی شکایت کروں. بوڑھی اگر بیٹا سم سدھر گیا تو بوڑھی کہے گی اس کی ماں, بیٹا کسی گاڑی رکھا کون سے کرے لڑکی دے گا. ارے تو لڑکی دے گی؟ لڑکی وہ ہے جو رب نے روزے اصل میں تمہارے نصیب میں لکھ دیا ہے. اے بوڑھیا سن لے, تیرے لڑکے کی نصیب میں جو لڑکی رب نے لکھ دیا ہے, وہ داڑھی رکھے یا چکنا چپڑا رہے, بوڑھیا بہو تو آئے گی. کیوں نبی کی سنت کی توہین کرتی ہے کہ داڑھی رکھنے سے کوئی لڑکی نہیں دے, اور جو نئی لڑکی دے گا اس کے منہ پر پھونک دو. ہمیں تیری لڑکی نہیں چاہیے جو کبھی کی سنت سے نفرت کرے. نوجوانوں میں جب یہ جذبہ پیدا ہو جائے گا تو سب ہاتھ جوڑیں گے, نہیں نہیں داڑھی والے کو ہم نہیں. اور داڑھی میں جو مردانگی ہے وہ داڑھی چھلانے میں نہیں ہے, طبی اصول اور میڈیکل سائنس سے پوچھ لو. ہمارا بلا کھڑے ہو گئے.